ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے سب پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں. ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے. لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے. زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے, پھر انہیں ملاتا ہے, پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے میہ برستا ہے. وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے, پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے. بادل ہی سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے گویا کہ اب آنکھوں کی روشنی لے چلی. یقلب اللہ اللیل والنہار, اللہ تعالیٰ ہی رات کو دن میں رد و بدل کرتا ہے. آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں. تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا. ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں, بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات, بلا شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے, پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد پھر جاتا ہے, یہ ایمان والے ہے ہی نہیں. جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے. ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو متی اور فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں. افی قلوبہم مرض, کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے, یا یہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں, یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کریں. بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں. رکوع نمبر 12 تھا. اس کا عنوان کیا ہے؟ اللہ کے مختلف رنگ. اس میں بنیادی طور پہ پیچھے جس نور کی بات ہوئی اب اس کے کچھ مناظر ہیں. اس کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے, آسمانوں اور زمین کی. پرندے جو اڑتے ہیں یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, اور ہر ایک کو اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. پھر اللہ کا نور اور کس صورت میں ہے اس کائنات میں؟ بادلوں کی صورت میں. کس طرح کٹتے ہیں, پھر جڑتے ہیں, پھر جمع ہوتے ہیں, پھر اس میں سے بارش کے قطرے آتے ہیں, پھر آسمان سے پہاڑوں کی بدولت اولے برستے ہیں, پھر آسمان سے جو بجلی ہے, یہ ساری چیزیں اللہ کا نور ہے, اس کے ہونے کا یقین دلاتی ہیں. پھر اس کے بعد رات اور دن کے پلٹنے کی بات ہوئی, پھر ہر جاندار کو پانی سے پیدا کرنے کی بات ہوئی, اور پھر یہ بتایا گیا کہ چار طرح کی مخلوقات ہیں. اگر آپ آیت نمبر 45 کو دیکھیں تو آپ انشاءاللہ اس کو انجوائے کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں, مثلا سانپ وغیرہ, چھپکلی. کچھ ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے مرغی, اور کچھ چار پہ چلتے ہیں جیسے یہ ہوتے ہیں چوپائے. اور آپ غور کر کے دیکھیں کہ انسان کی زندگی میں یہ تینوں سٹیجز آتی ہیں. بچہ پہلے پیٹ پہ رینگتا ہے, پھر چار ٹانگوں پہ چلتا ہے, پھر دو پہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا. یہ ساری چیزیں انسان کو دکھانے کے بعد آخر رکوع میں بتایا, کچھ لوگ اتنی چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان سے منہ پھیرتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں, ان کو یہ نور دکھتا نہیں. ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی, لیکن عمل میں منہ موڑتے ہیں. اگر بات ان کی مرضی کی ہو تو مان لیتے ہیں, اور اگر بات پسند نہ آئے تو پلٹ جاتے ہیں. اس کی تین وجوہات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیں کہ لوگ سن کے عمل کیوں نہیں کر پاتے. نمبر ایک, بلکہ آیت کو ہائی لائٹ کر لیجیے, آیت 50 ہے آخری اس رکوع کی. افی قلوبہم مرض, کہ ان کے دل بیمار ہیں. क्या इनको दिल की बीमारी है, रोग लगे हुए हैं मुनाफकत के, नाफरमानियों के? अमीर ताबू ये शक में है, शक है अभी तक कि ये दीन सच्चा है भी कि नहीं, और ये बातें पता नहीं जायज़ हैं कि नहीं, और कोई तो कहता है ये करना जायज़ है, कोई कहता है नहीं जायज़। शक की वजह से भी लोग अमल नहीं कर पाते, और बाद लोग जान के शक से निकलते भी नहीं ताकि अमल ना करना पड़े। और तीसरी चीज क्या है, अय यखाफून अय यहीफल्लाहु अलैहिम व रसूलु, ये सोचते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल उन पर जुल्म करेगा इतने सख्त किस्म के हुक्म सुना के। हमारे अमल की बात क्या है, हमने अपने तरीके से अल्लाह की तस्बीह करनी है, इन तीन चीजों से अपने दिलों को महफूज रखना है ताकि हम अल्लाह के सुने हुए हुक्मों पे अमल कर सकें। रुकू नंबर 13 देखते हैं, इन्नमा कान कौलुल मुमिनीन, ईमान वालों का कौल तो ये है कि जब उन्हें इसलिए बुलाया जाता है कि अल्लाह और इसका रसूल इनमें फैसला कर दे तो वो कहते हैं हमने सुना और मान लिया, समेना व अतवाना, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। जो लोग भी अल्लाह की और उसके रसूल की फरमा बरदारी करें, खौफे इलाही रखें और इसके अजाबों से डरते रहें, वही निजात पाने वाले हैं। बड़ी पुख्तगी के साथ अल्लाह ताला की कस्में खा खा कर कहते हैं कि आपका हुक्म होते ही निकल खड़े होंगे, कह दीजिए कि बस कस्में न खाओ, तुम्हारी इताअत की हकीकत हमें मालूम है, तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है, कह दीजिए कि अल्लाह ताला का हुक्म मानो और रसूल की इताअत करो, फिर भी अगर तुमने रूगरदानी की तो रसूल के जिम्मे तो सिर्फ वही है जो इस पर लाजिम कर दिया गया है, और तुम पर इसकी जवाबदेही है जो तुम पर रखा गया है। हिदायत तो तुम्हें इसी वक्त मिलेगी जब रसूल की मातहती करो, सुनो रसूल के जिम्मे तो साफ साफ तौर पर पहुंचा देना है। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस्सालिहात, तुम में से उन लोगों से जो ईमान लाए और नेक आमाल किए अल्लाह ताला वादा फरमा चुका है कि इन्हें जरूर जमीन में खलीफा बनाएगा जैसे कि इन लोगों को खलीफा बनाया था जो इनसे पहले थे, और यकीनन इनके लिए इनके इस दीन को मजबूती के साथ मुहकम करके जमा देगा जैसे इनके लिए वो पसंद फरमा चुका है, और इनके इस खौफ और खतर को वो अमन और अमान से बदल देगा। वो मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराएंगे, इसके बाद भी जो लोग नाशुक्री और कुफर करें वो यकीनन फासिक हैं। वअकीमुस्सलात वआतुज़्ज़का वअतीउर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून, नमाज की पाबंदी करो, ज़कात अदा करो और अल्लाह ताला के रसूल की फरमाबरदारी में लगे रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ला तखसबन्नल लज़ीना कफरू, ये ख्याल आप कभी न करना कि मुनकर लोग जमीन में इधर उधर भाग कर हमें हरा देने वाले हैं, इनका असली ठिकाना तो जहन्नम है जो यकीनन बहुत ही बुरा ठिकाना है। ये थरकू नंबर 13, इसका उन्वान क्या है, समेना व अताना, सबको इसका तर्जमा मालूम है, हमने सुना और हम मानेंगे। अल्लाह ताला हम सबको ये कहने वाला बना दे, समेना व अताना, क्योंकि इसके बाद वह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, पारा कहाँ से शुरू हुआ था, कद अफ्लहल मोमिनून, किसको मिलेगी, इन सारे हुक्मों को सुनने वाले, हाईलाइट करने वाले, इसके मेन पॉइंट लिखने वालों को, इसका तर्जमा सुनने वालों को, नहीं, इन सबको सुन के समेना व अताना कहने वाले, और अल्लाह हमें इसकी तौफीक देते। मेन पॉइंट क्या है इसके लिख लीजिए कि यहां मुनाफिकों के दिल की हालत खोली गई, जिनके दिलों में अल्लाह के नबी का एहतराम नहीं था, फायदा लेते थे लेकिन आपकी इज्जत नहीं करते थे। कैसे पता चलता था, कस्में खाते थे अल्लाह के नाम की कि आप कुछ कहेंगे तो हम मानेंगे, लेकिन अमल में पीछे रहते थे, बात से मुंह मोड़ लेते थे। इनको बताया गया कि कस्में ना खाओ, हमें तुम्हारे दिल के हाल मालूम है, और रसूल के जिम्मे तो सिर्फ बात पहुंचाना है, तुम्हारा मामला अल्लाह के जिम्मा है, और इसके बरक्स ईमान वाले उनकी बात क्या है? जब बात सुनते हैं तो मानते हैं, समय ना व अता ना कहते हैं, ऐसे लोग कामयाब होंगे। और यही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करते हैं और उसकी नाफरमानी से डरते हैं। और इसके बाद फिर काफिरों का जिक्र हुआ कि वो दुनिया में अल्लाह ताला को आजिज नहीं कर सकते और इनका ठिकाना दोजख है। और रुकू के आखिर में हमने देखा एक बड़ी खूबसूरत बात की खबर दी गई, खुशखबरी है इसमें, और वो क्या है कि जमीन पर अहले ईमान ही गालिब होंगे। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, क्या वादा है कि तुमको गालिब करूंगा और ऐसा दीन दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे, तुम्हारे खौफ को अमन में बदल दूंगा, फिर ऐसा मुआशरा होगा कि लोग अल्लाह की बंदगी करेंगे और शिर्क नहीं करेंगे। शर्त क्या है इसके लिए? हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो, ज़कात दो और इताअत करो। आपने एक चीज़ गौर की, सूरत नूर में एक बात पे बहुत दफ़ा बात हो रही है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। रुकू नंबर 14, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तुम में से तुम्हारी मलकियत के गुलामों को और इन्हें भी जो तुम में से बलूगत को ना पहुंचे हों, अपने आने के 3 वक्तों में इजाजत हासिल करनी चाहिए। कौन से 3 वक्त हैं? नमाज फजर से पहले, जोहर के वक्त जबकि तुम अपने कपड़े उतार रखते हो, और ईशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारी खलवत और पर्दे के हैं। इन वक्तों के सिवा ना तो तुम पर कोई गुनाह है ना उन पर। तुम सब आपस में एक दूसरे के पास बकसरत आने जाने वाले हो, और अल्लाह ही इसी तरह खोल खोल कर अपने अहकाम तुमसे बयान फरमा रहा है। अल्लाह ताला पूरे इल्म और कामिल हिकमत वाला है। वह इज़ा बलगल अतफाल मिनकुमुल हुलुम, और जब तुम्हारे बच्चे बलूगत को पहुंच जाएं, तो जिस तरह उनके अगले लोग इजाजत मांगते हैं, इन्हें भी इजाजत मांग कर आना चाहिए। अल्लाह ताला तुमसे इसी तरह अपनी आयतें बयान फरमाता है। अल्लाह ताला ही इल्म और हिकमत वाला है। वल कवाइद मिनन निसा इल्लाती ला यरजून निकाहा, बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें निकाह की उम्मीद और ख्वाहिश ना रही हो, वो अगर अपने कपड़े हल्के कर लें तो इन पर कोई गुनाह नहीं, बशर्ते कि वो अपना बनाव सिंगार जाहिर करने वालियां ना हों। अगर हम इनसे भी एहतियात करें तो इनके लिए बहुत बेहतर है, और अल्लाह ताला सुनता और जानता है। अंधे पर, लंगड़े पर, बीमार पर और खुद तुम पर मुतलकन कोई हरज नहीं कि तुम अपने घरों से खा लो, या अपने बापों के घरों से, या अपनी माओं के घरों से, या अपने भाइयों के घर से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने चचाओं के घरों से, या अपनी फूफियों के घरों से, या अपने मामुओं के घरों से, या अपनी खालाओं के घरों से, या जिनकी कुंजियों के तुम मालिक हुए हो, या अपने दोस्तों के घरों से। तुम पर इसमें भी कोई गुनाह नहीं कि तुम सब साथ बैठकर खाना खाओ या अलग अलग खाओ। बस जब तुम घरों में जाने लगो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो। दुआए खैर है जो बाबरकत और पाकीज़ा है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा। यूं ही अल्लाह ताला खोल खोल कर तुमसे अपने अहकाम बयान करता है ताकि तुम समझ जाओ। ये तरकू नंबर 14, इसका उन्वान है अंदर जाना मना है, और यही है आज की बुक का नाम भी। यहां दोबारा कुछ इजाजत की बातें हुई। शुरू में घर के मामलात की तंजीम के नाते से 4 बातें मालूम हुई। कौन कौन सी? नंबर 1, 3 वक्त पर्दे के हैं, यानी बच्चा भी अगर माँ बाप के कमरे में जाता है तो इजाजत लेके आएगा। कौन कौन से? फजर की नमाज से पहले, दोपहर यानी कैलूला, और ईशा की नमाज के बाद का वक्त। वजह क्या है इसकी? कि ये पर्दे के वक्त हैं, खलवत के वक्त हैं, तन्हाई की बातें हैं। दूसरी बात, कैसे वक्त में गुलाम या लौंडियां भी इजाजत लेके आएंगे। अगली बात मालूम हुई कि इन वक्तों के अलावा अगर घर के लोग एक दूसरे के पास आना चाहें किसी और वक्त में तो इजाजत की जरूरत नहीं। और चौथी बात ये मालूम हुई कि बच्चे को जब शऊर शुरू हो जाए तो वो भी इजाजत तलब करेगा जैसे कि बड़े लोग करते थे। इसके बाद दूसरी बात हुई उन औरतों की जो जवानी की हदूद से गुजर चुकी, कोई औरत नहीं मानती वैसे ये बात, लेकिन जब अगले अहकामात सुनती हैं तो कहती हैं कि ये मेरे ही लिए बात। मैंने बहुत जवान लोगों को भी कहा कि ये तो बात हमारे लिए। तीन बातें हैं, कौन कौन सी? नंबर एक, वो औरतें जिनको निकाह की उम्मीद ना रहे, वो अपनी मोटी चादरें उतारते हैं, यानी घर से बाहर जाने के कपड़े हल्के कर दें तो कोई हरज नहीं, लेकिन शर्त है। वो क्या? कि वो भी अपनी जीनत की नुमाइश ना करने वालियां हों, और अगर वो हयादारी बरतें तो ये उनके हक में बेहतर है। यानी जरूर शर्त नहीं कि ऐसा करें, कोई अगर ऐसा नहीं करता तो ज्यादा अदब की बात है। उसके बाद आखिर में खाने पीने के कुछ आदाब हुए। पहली बात क्या पता चली कि अगर कोई हैंडीकैप यानी जहनी तवाजुन जिसका कमजोर है या खराब है, किसी के घर से बगैर इजाजत के कुछ खा ले तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि शौर नहीं है ना उसको, या कोई उसकी मजबूरी है। दूसरी बात यह है कि खाना मिलकर खाओ तो अच्छा है, और अकेले भी खा सकते हो, यानी खाना खाने के आदाब सिखाए जा रहे हैं। तीसरी बात एक लिस्ट दे दी कि इन इन के घरों से अगर इनकी गैर मौजूदगी में मौका नहीं इजाजत लेने का, पूछने का, बताने का, तो खा लो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन याद रखिए कि उतना ही खाएं जितना उनके सामने खा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो इतना खा लें कि जो फिर बाद में वो दोबारा आपको चाबियां ना देके जाएं। और लिस्ट वाजे है, दोहरा देती हूं अगर आप लोग लिख रहे हैं। पहली बात यह कि अपना घर, कोई इजाजत नहीं, शौहर को बीवी से पूछने की जरूरत नहीं कि बेगम मैं ये खा लूं, और बेगम भी शौहर को पूछने की नहीं, फोन करे दफ्तर में बड़ा इमरजेंसी है, क्या मैं एक एप्पल खा लूं, तो ना खा सकते हैं, अपना घर है और इसको अपना ही घर समझें। दूसरी चीज क्या है? बाप का घर। इसका अंदर कि आपके बच्चे भी आपसे पूछे बगैर खा सकते हैं, उनको इजाजत की जरूरत नहीं, लेकिन अदब सिखाने के लिए अगर आप कुछ पाबंदियां लगाएं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। दादा दादी के घर जाएं तो खा सकते हैं, फिर अपनी माँ यानी नानी के घर में जाएं, भाइयों के घर, बहनों, चचाओं, फूफियों, मामू, खालाओं, और इसके साथ हर वो जिसके घर की चाबियां आपके पास हों। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि दोस्तों के घर से भी खा सकते हैं। अब ये खाने पीने की बात, अभी इस पे बात दोबारा कर लेते हैं, आखिरी बात लिख ले। इस रुकू का मेन पॉइंट क्या था कि घरों में दाखिल होने का एक और अदब सिखाया गया कि सलाम करो, यानी घर में जाते ही सबसे पहली जो चीज होगी वो सलाम होगी। हमारे लिए इस रुकू में क्या बात है? वही पहली बात के घर में अंदर आने की इजाजत क्यों ली जाएगी। आप देखिए कि हर इंसान अपनी जिंदगी में प्राइवेसी को पसंद करता है, उसको ये नहीं अच्छा लगता कि कोई उसकी तन्हाई में मुखल हो। छोटे बच्चों को ये अदब क्यों सिखाया जाता है? बहुत सारी उसकी वजूहात तो होंगी, वो तो वक्त में समझ में आएंगी ही, लेकिन जो चीज़ मैंने आज के इस माशरे के नाते से सुनी है, अल्लाह ना करे देखी है, और वो क्या है कि बच्चे स्कूल में ऐसी नाजेबा हरकतें करते पाए गए, छोटे बच्चे, 3, 4, 5 साल के बच्चे, और क्या कह रहे थे कि आओ वो करते हैं जो मम्मी पापा करते हैं। यकीन करें, ये एक दोस्त है मेरी, किसी स्कूल में काम करती हैं, पढ़ती हैं, पढ़ाती हैं, और वहां बच्चे अजीब सी हरकतें, यानी जाहरी जो भी बेहूदगी के इब्तदाई काम हो सकते हैं वो आपस में करते हैं, और वो कहते हैं कि ये काम जो है ये हमने इस तरह करते देखा। आप हैरान रहेंगे कि इस वक्त जो फितने हैं, 3 साल का बच्चा 3.5 साल की बच्ची के पीछे लगता है, आप बिलीव कर सकते हैं? और माँ परेशान है कि मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊं, जहां मिलता है मस्जिदों में जाते हैं, इफ्तारियों में जाते हैं, वो बच्चा मेरी बच्ची के पीछे है, उसके बालों को छूता है, उसको देख के अजीब नजरों से देखता है, उसको कहता है तुम मेरे ख्वाबों में आती हो। मैंने कहा कि ये मामला तुम्हारे लिए जितना मुश्किल है, जितना परेशान कुन है, इससे ज्यादा तो मुझे रहम और हमदर्दी आ रही है उस बच्चे की माँ से जिसका वो बच्चा है। तुम तो उसको बचा लोगी, अपनी बच्ची को दूर कर दोगी, कहीं चली जाओगी, उसका क्या बनेगा? और उसकी माँ, एक भोलपन होता है ना, लोगों को नहीं पता चलता, जब माँ ने लड़के की माँ से जिक्र किया तो हंस के कहती है कोई बात नहीं, इसकी आदत है, पहले भी एक और शहर में रहते थे तो ये एक लड़की के पीछे लग गया था, और तुम्हारी बेटी को तो मैं ले लूंगी। अब सोचिए, ये सिर्फ शौर की बात है, किसी का नाम नहीं, किसी का मजाक नहीं, सिर्फ एक शौर बेदार करना। ये हुआ कैसे? पहले तो एक वक्त था कि अपनी शादी के वक्त तक पहले नहीं पता होता था कि शादी होती क्या, आज बच्चे बच्चे को क्यों पता है कि ये काम क्या है। मैंने एक इसका तज्जिया किया था एक दफा कि कुछ माए बच्चों को जो कार्टून्स हम दिखाते हैं ना, मैं आप सबको मशवरा दूंगी कि आप खुद भी एक दफा उसको देख लें। कई कबाखते हैं उसमें जोर है म्यूजिक वगैरह की, लेकिन उसके बरक्स मैंने एक दफा एक नजर मेरी पड़ गई थी, किसी भी जगह बच्चे देख रहे थे और माँ बाप बड़े मुतमइन थे कि बच्चे कार्टून ही देख रहे हैं, और मैंने देखा कि यकीन करें कि सिर्फ शक्लें कार्टूनों की थी लेकिन हरकतें सब वही थी जो किसी भी वल्गर फिल्म में हो सकती हैं। बिकिनीज पहने हुए हर वो काम कर रहे थे जो वो करते थे। और मैंने देखा है कि एक वक्त आता है कि इंसान की आंखों से हया उठ जाती है। एक वो वक्त था कि लोग मिलके बैठ के मूवीज देखते थे, जरा ऐसा सीन आता था तो लोग फौरन उसको अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल लेते थे। उस दिन जिन्होंने नन्ना मुबल्लिक सुनी है किताब, उन्होंने देखा होगा कि इसमें किस तरीके से बात की गई। आज वो हया खत्म हो गई, बाप भी साथ बैठा है, बहन भी बैठी है, बहन भाई भी हैं तो बेटी बाप भी बैठे हैं, हया खत्म हो गई। कैसी कैसी कवाखतें इस चीज से आ रही हैं आप सोच नहीं सकते। और नबी सल्लम की वो बात सच हो रही है, कियामत से पहले महरम रिश्तों में जिना होगा। और यकीन करें ये सच है, भाई बहन से जिना करता है, बेटा माँ से जिना करता है, उसको शाम की चाय के अंदर रात की चाय में कुछ नींद की गोली दे के उसके साथ बुरा फेल करता है। आप सोच सकते हैं, भाई हॉस्टल में रहता है, एक वीकेंड पे घर आता है और उसका गुजारा नहीं जब तक वो अपनी बहन के साथ ना आ जाए। सोचिए तन्हाई में अकेले में क्या होगा जब माँ बाप की नजरों से दूर है। ये है फितने जिससे इस्लाम रोकता है। क्यों अंदर आने से रोकता है? कि घरों के अंदर आने से रुकोगे तो किसी और की और प्राइवेट चीजों से भी रुकोगे। पूरी सूरत एक ही पैगाम दे रही है कि अपनी नस्लों को बचा लो, की हिफाजत कर दो इनकी शादियां जवान होते ही कर दो। यदि एक पूरी लिस्ट है, अगर मौका मिला तो शायद एंड पे मैं आपके सामने रखूं कि क्या क्या चीजें हैं कि जिससे ये रास्ते बंद हों। कैसे रोकेंगे? आज हम शादी नहीं करने देते, जिना की इजाजत देते हैं। कहीं जहेज जमा हो रहे हैं, कहीं पढ़ने की जरूरत है, अभी स्टेटस बनना है, अभी घर बन ले, गुनाह करते रहो, शादी नहीं करना। और इस जिस जालिम मुआशरे में हम बैठे हैं वहां निकाह पे तो पाबंदी है 18 साल से पहले, और जिना के लिए हर वो सहूलत दी जा रही है कि जो शायद बलूगत से पहले के हालात शुरू हो जाए। आपको मालूम है किस वक्त जो कानून यहां की असम्बलीज में पास हो रहा है वो क्या है? कि हाई स्कूलों में ऐसी चीजों की इजाजत दी जाए, स्पेशल रूम्स बने ताकि लोगों को बाथरूम्स में जाके ये हरकतें ना करनी पड़े। और कल आज हम सुन के इस्तग़फ़ार कहने वाले लोग आज से 10 साल बाद हम इस मुआशरे के जैसे बाकी कानूनों को अपनाए बैठे हैं। खुदा ना करे कि हम इसको अपनाने लग जाएं। जितने बंद बांध सकते हैं बांध लें, वरना जब पानी हद से गुजर जाएगा तो फिर क़यामत के दिन की रुसवाई तो याद ही रहेगी। दुनिया में तो जो है वो है, अल्लाह ताला हम पे रहम कर दे, तौफीक दे के हम बात को सुन के मानने वाले बने। रुकू नंबर 15। इन्नमल मोमिनूना लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रसूली। बईमान लोग तो वही हैं जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर यकीन रखते हैं, और जब ऐसे मामले में जिसमें लोगों के जमा होने की जरूरत होती है नबी के साथ होते हैं तो जब तक आपसे इजाजत ना लें कहीं नहीं जाते। जो लोग ऐसे मौके पर आपसे इजाजत लेते हैं हकीकत में यही है वो लोग जो अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं। बस जब आप ऐसे लोग आपसे किसी काम की इजाजत तलब करें तो आप इनमें से जिसे चाहें इजाजत दें और उनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ मांगे, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। तुम अल्लाह ताला के नबी के बुलाने को ऐसा बुलाना न समझो जैसा तुम आपस में एक दूसरे के बुलाने को समझते हो। तुम में से अल्लाह इन्हें खूब जानता है जो तुम में से नजर बचाकर चुपके से सिरक जाते हैं। सुनो सुनो, जो लोग हुक्मे रसूल की मुखालफत करते हैं उन्हें डरते रहना चाहिए, कहीं इन पर कोई जबरदस्त आफत ना आ पड़े या इन्हें दर्दनाक अजाब ना पहुंचे। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। आगाह रहो कि आसमानों जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ताला का है। जिस रविश पर तुम हो वो इसे बखूबी जानता है, और जिस दिन ये सब इसी की तरफ लौटाए जाएंगे इस दिन इनको इनके किए से वो खबरदार कर देगा। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। इसका उनवान क्या है? आंख बचाकर। असल में यहां मोमिनों की कुछ बातें बताई गईं, कुछ खास वसफ होते हैं उनके। कौन कौन से? नंबर एक, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को दिल से मानते हैं। और इसको सूरत के ततिम्मे के तौर पे भी सोचिएगा कि पूरी सूरत के बाद आखिरी रुकू हमें क्या पैगाम दे रहा है। کہ مومن بننا چاہتے ہو تو یہ کرنا پڑے گا. نمبر دو, جب کسی اجتماعی کام پہ جمع ہوں تو بغیر اجازت کے وہاں سے نہیں اٹھتے. جو مومن مجبوری میں جانا چاہے تو وہ اجازت طلب کرتا ہے, جو اجازت مانگے اس کو اجازت دے دو, اور اس کے لیے دعا کرو کہ جس نیکی سے یہ محروم ہوا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. اور وہ لوگ, دوسری بات پتہ چلی اس سے کہ اللہ کے نبی کو پکارنا ایسا نہیں جیسے آپس میں پکارتے ہو, ادب سکھایا گیا بڑوں کو پکارنے کا, جن کے اندر یعنی انسان اللہ کے نبی اور کوئی بھی اس دور کے عالم, مبلغ, استاد, ان کا پکارنا عام لوگوں جیسا پکارنا نہیں ہوتا. پھر اس میں اجتماعی معاملات میں ٹیم ورک لکھ لیں آپ اس کو, ناکام لوگوں کی کچھ نشانیاں, کون سے لوگ ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں خیر کے کام کرنے میں یا کرانے میں. نمبر ایک, ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے کھسک جاتے ہیں, یعنی بیچ میں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, اللہ کے حکم کی, اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرنے والے, فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں. ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پہ دردناک عذاب نہ آ جائے. اور سورت کی آخری آیت, اللہ اپنی وسعتوں کا اندازہ دلاتا ہے. کھولیے پہلی آیت سورت نور کی, انداز دیکھیے کیا تھا, بات شروع کیسے ہوئی. سورت انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. یہ وہ سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا, ہم نے فرض کیا اور ہم نے اس میں نشانیاں ڈالی. کس پہ زور ہے؟ ہم نے, اللہ نے, اس کے حکموں کو اس کا سمجھنا. بندہ سوچتا ہے میں کیوں کہوں, میں نہیں مانتا. کہا اچھا نہیں سمجھ آتی, میرا نہیں پتا میں کون ہوں. اللہ نور السماوات والارض, اتنی طاقت ہے. اور آخری آیت میں الا ان للہ ما فی السماوات والارض, کیا بتایا, اتنے بڑے رب کی نافرمانی کرو گے. دنیا میں کوئی بڑا بندہ کوئی بات کہہ دے تو خوشی خوشی کرتے ہو, اور اگر اتنی بڑی ذات نے اس کی بات نہ مانو گے تو کون سی زمین تمہیں پناہ دے گی اور کون سا آسمان تمہیں بچائے گا. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الفرقان, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے. اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین کی, اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا, نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے, اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازے پر ٹھہرا دیا. ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا دیا, وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. یہ تو اپنی جان کے نقصان اور نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے, اور نہ موت اور حیات اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے مالک ہیں. اور کافروں نے کہا یہ تو سب بس اسی کا گھڑا گھڑایا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے. دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور سر سے پاؤں تک جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھا رکھے ہیں, بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں. اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے, بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے. وقالوا ما لهذا الرسول, اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا اور کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا, یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا, یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھاتا. اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو چلے جس پر جادو کیا گیا ہے. انظر کیف ضربوا لک الامثال, خیال تو کیجئے یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں, بس جس سے خود ہی بہک رہے ہیں اور کسی طرح راہ پر نہیں آ سکتے. یہ ترکو نمبر 16، اس کا عنوان کیا ہے؟ بابرکت ہے وہ ذات. سورۃ فرقان مکی سورت ہے، بڑا پیارا اس کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو انکار کرتے ہیں، خود نبی کی بات نہیں مانتے، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے معبود بناتے ہیں، قرآن کو من گھڑت چیز کہتے ہیں، رسول پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے، کھاتا اور پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے. یعنی لوگ ہمیشہ دیندار سے کوئی ماورائی قسم کا تصور جمع کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی ایسی مخلوق ہوگی کہ جن کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں. اور یقین کریں کہ دین کے نام پہ یہ ایک زیادتی ہوئی کہ دین والوں نے اپنے آپ کو ایسا ہی ایک ما فوق الفطرہ چیز بنا کے پیش کیا. لمبے لمبے القابات کی پہلے بات ہوتی ہے کہ لوگ ان کے بارے میں نجی زندگی کا تصور ہی نہیں کرتے، لہٰذا کبھی ان کی کوئی بات ملتی ہے تو پھر اس کو لے کے اچھالنے لگتے ہیں. حالانکہ ایک اچھا داعی دین کون ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک سیڑھی نیچے لائے اور سننے والوں کو ایک سیڑھی اوپر کرے، تاکہ بیچ کے پردے حائل ہو جو ہیں وہ اس کو کٹیں اور دونوں ایک کمیونیکیشن پہ آ کے بات کو سن سکیں. اگلی چیز اس میں سمجھ میں آئی، کہتے تھے اس پہ خزانہ کیوں نہیں اترا. وہی اعتراض جو ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ ہوتے رہے کہ یہ خزانے کیوں نہیں لائے، باغ کیوں نہیں ہے. سوچنے کی بات ہے کہ یہ تمہیں کس طرف بلا رہا ہے، جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ ہے کہ نہیں. اب دیکھیں کتنی احمقانہ سوچ ہوتی ہے نا لوگوں کی. ایک علم والا تمہیں بلاتا ہے دنیا چھوڑنے کی طرف، دنیا سے بے رغبتی کی طرف، اور تم اس کی زندگی میں ڈھونڈتے ہو کہ اس کے پاس دنیا کیوں نہیں ہے. نا بات الٹی، وہ تو تمہیں اس پہ، یا تو وہ تمہیں بلائے نا لوگوں گھر بناؤ، لوگوں سونا چاندی جمع کرو، پھر لوگ کہیں جی آپ کے پاس خود تو ہے نہیں، ہمیں کیوں دیتے ہیں. عقل نہیں لوگ کام کرتی نا. اور نبیوں کے ساتھ دیکھیے جب لوگوں نے یہ مکالمے کیے ہوں گے تو پھر ان کی کیا حالت ہوگی. تو پورے رکوع کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط تعلق قائم کرنا اور اعتراضات کے جواب میں مسکرا دینا. کبھی آپ پہ کوئی اعتراض کرے نا تو مسکرا دیا کریں، کریں دین کا کام شروع، پھر دیکھیں کتنے اعتراض ہوتے ہیں، لوگ آپ کو اپنی ملکیت سمجھیں گے. چلیے آخری آیتیں ہیں تھوڑی سی، اگلا جو رکوع ہے اس کو پورا کرتے ہیں. تبارک الذی ان شاء اجعل لک خیرا من ذلک. اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے. آپ نوٹ کریں اس صورت میں تبارک کا لفظ بہت آ رہا ہے، اسی لیے اس رکوع کا نام یہی چوز کیا تھا. اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے، اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں، جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکیں کس کر پھینک دیے جائیں گے، یعنی باندھ کے، تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت کو پکاریں گے. لا تدل یوم صبورا واحدا ودعو صبورا کثیرا. ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو. یعنی آنی تو ہے نہیں، جتنا مرضی پکارو. آپ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے. وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا ہمیشہ رہنے والے. یہ تو آپ کے رب کے ذمے وعدہ ہے جو قابل طلب ہے. اور جس دن اللہ تعالیٰ نے، اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے تھے، جمع کر کے پوچھے گا کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا یہ خود ہی راہ سے گم ہو گئے. قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا. وہ جواب دیں گے تو پاک ذات ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے. بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو آسودگیاں عطا فرمائیں، یہاں تک کہ وہ نصیحت بھلا بیٹھے، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے. تو انہوں نے تمہیں اور تمہاری تمام باتوں کو جھٹلایا، اپنا تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدد کرنے کی. تم میں سے جس جس نے ظلم کیا پس ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے. وما ارسلنا قبلک من المرسلین. ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے، और बाजारों में भी चलते फिरते थे, और हमने तुम में से हर एक को दूसरे की आजमाइश का जरिया बना दिया। अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करोगे? तेरा रब सब कुछ देखने वाला है। रुकू नंबर 17 था, इसका उन्वान क्या है? क्या सब्र करोगे? क्या जवाब है? इसमें झुटलाने वाले लोगों के रवैये पे बात आग पे पेश किए जाएंगे। भड़कती हुई आग है, दूर से मुनकरीन को देके जोश मारेगी, खोलेगी जहन्नुम की आग। इनकार करने वाले इसकी आवाजें सुनेंगे। जकड़े हुए दोजख में तंग जगह पे ठोंसे जाएंगे, अपनी मौत को पुकारेंगे। कहा जाएगा एक नहीं कई मौतों को पुकारो, तुम आज अपनी शामत को टाल नहीं सकते, ना तुम मदद पा सकोगे, और जुल्म करने वाले अजाब का मजा चखेंगे। इसके बरक्स फिर मुत्तकीन को जन्नत अता होगी। पांच बातें पता चली। जन्नत का वादा है मुत्तकीन से। वादे का क्या मतलब है? कि ना मिली तो कल जाके पूछ सकते हैं कि अल्लाह हम तो तेरे कहने पे सारी जिंदगी बचते रहे गुनाहों से, तूने जन्नत नहीं दी? यानी सवाल कर सकते हो। आमाल की जजा के तौर पर मिलेगी। आमाल नहीं है तो फिर जजा कैसी? जन्नत इनके सफर की आखिरी मंजिल होगी। कितना सुकून मिलता है लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच के। किसी ने अगर सफर किया हो यहां से पाकिस्तान का, 5-6 स्टॉप हो अगर खुदा ना खास्ता बीच में, कहीं भी उतरते हुए खुशी नहीं होती जितनी खुशी अपनी मंजिल पे। अल्हम्दुलिल्लाह आप उतर गए। क्या सुकून होगा उस दिन बंदे मोमिन की जिंदगी में जब जन्नत में उतरेंगे। ऐ अल्लाह अब आ गया अपना घर, हम तो दुनिया को जन्नत बनाते रहे, हमने तो दुनिया में आराम के सामान जमा किए, असल में जन्नत तो ये थी। फिर वहां सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, हमेशा रहेंगे। हम कहीं पहुंच भी जाते हैं ना, 2-4 दिन गुजरते हैं तो फिक्र लग जाती है, हाय वापस भी जाना है, इतना लंबा सफर तय करना है, फिर वापस जाएंगे। लेकिन जन्नत का सफर वन वे है, वन वे टिकट लेके जाएंगे आप, कि हमें वापस नहीं आना। अल्लाह ताला हम पे रहम करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज की आयत तदब्बुर, क्या आयत तदब्बुर है, पूरा रुकू है सूरत अल मोमिनून का आखिरी नंबर बोल देती हूँ आयतों के। आयत नंबर 99 से लेके 99 से लेके 118 तक। आज की हदीस क्या है? अहब्बुल आमाल इलल्लाही अल ईमान बिल्लाह। तमाम आमाल में सबसे ज्यादा महबूब अमल अल्लाह पर ईमान लाना है। और आज की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अहसिन आकिबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन हिज्रिद दुनिया व अजाबिल आखिरा। ए अल्लाह, सब कामों में हमारा अंजाम अच्छा फरमा, और हमें दुनिया और आखरत की रुसवाई से बचा, दुनिया की रुसवाई और आखरत के अजाब से बचा। आमीन। और आज की कमिटमेंट क्या है? सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं करना इंशाअल्लाह ताला, और हर काम को दाई जानिब से शुरू करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।